प्रवचन सार, प्रवचन सुधा भाग तीन, लेक्चर नंबर 148। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्तानं, नमो सिद्धाणं, नमो आयायाणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोये सौवसाहूनम्। सुरसुर नरपति वंद्यने प्रविनष्ट घाती कर्मने प्रणमन करु हूँ धर्म कर्ता। तीर्थ श्री महावीर ने बड़ी शेष तीर्थंकर ने सौ सिद्ध शुद्धास्तित्व ने मुनि ज्ञान दृग चारित्र तपवीर्या चरण संयुक्त ने ते सर्वने साथे तथा प्रत्येकने वंदु वणी हूँ मनुज क्षेत्रे वर्ततारहंतने अरहंतने सौसिद्धने य नमस्करण करिये रीते गणधरने अध्यापकोने सर्वसाधु समूहने तसुशुद्ध दर्शन ज्ञानमु पवित्र आश्रम पामिने प्राप्ति करूं हूँ साम्यनी जे नाथी शिव प्राप्ति बने। आचार्य श्री कुनकुन भगवान द्वारा रचित यह प्रवचन सार नामक परमागम ग्रंथ है। उस पर अमृतचंद्राचार्य ने तत्व प्रदीपिका टीका लिखी हुई है तथा जयसेनाचार्य ने तात्पर्य उक्ति टीका लिखी है। इन पर गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के जो प्रवचन हुए वो प्रवचन सुधा पुस्तक रूप से प्रसिद्ध हुए हैं। उसमें से ये तीसरी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 50 पर हम आ गए, 50। नीचे का जो पैराग्राफ है यहाँ से हम पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। ए रीते इंद्रिय ज्ञान और सुख की बात यहाँ चल रही थी, क्योंकि वो जो इंद्रिय ज्ञान और सुख जो है वो तो उसको पर को परिणमाने का अभिप्राय वहां, क्योंकि मिथ्या दृष्टि की बात यहाँ चल रही थी। तो कहते कि डगले ने पगले क्षेत्रातु थकू परमार्थे अज्ञान गणावाने योग्य छे, यानी इंद्रिय ज्ञान है उसी को अज्ञान, उसको अज्ञान ही कहने लायक है। ए इंद्रिय ज्ञान फिर से ए इंद्रिय ज्ञान अने इंद्रिय सुखमा अज्ञान छे मिथ्यात्वनी भ्रमणा छे एम कहे छे। आथी ते हेय छे आ सरवाळो, इंद्रिय ज्ञान परमार्थे अज्ञान गणावाने योग्य छे, केम के पगले पगले ठगाय छे। जिसको अतीन्द्रिय ज्ञान का अनुभव नहीं है उसकी बात यहाँ चल रही है। समय दृष्टि के भी तो इंद्रिय से तो जानना चल रहा है, परंतु ना उसमें वो सुख मानता है और ना ही वो तो अतिंद्रिय मानता है। जानवानु कहीं खोए अने जनाए जाए कहींक, बीजा पदार्थ ने परिणमवाने बदलावाने अभिप्राय करतु परिणमे छे, क्योंकि वो चाहता तो है परंतु छता बदलवू न बदलवू एने आधीन नथी। ये तो केवल विकल्प करता है, अभिप्राय करता है। એ ક્ષણે ક્ષણે છેતરાય છે. એવું જ્ઞાન છે તેને હેય કહેવામાં આવે છે, ક્યોંકિ વો પરકો જાનતે હુએ ઉસકે પરિણમને કા અભિપ્રાય હૈ, ઉસકા કર્તૃત્વ અપના બના હૈ ઉસમે, ઇસલિયે કહેતે હુએ ઉસકો તો માન રહા હૈ ના કે મેં ઇસકા કર સકતા ઓર હો સકતા નહીં હૈ, ઇસલિયે કહેતે કે તેને ક્ષણે ક્ષણે છેતરાય છે ઓર ઇસીલિયે ઉસકો હેય કહી દિયા. 51 પેજ પર આયે અભી હમ. અતિન્દ્રિય જ્ઞાન ભગવાન ઇન્દ્રિય જ્ઞાનથી લક્ષ્ય છોડી દઈ, ઇન્દ્રિયના સુખથી પણ લક્ષ્ય છોડી દઈ. વો 144 ગાથા મેં ભી હૈ ને, વો સબકા મતિ જ્ઞાન યે સારે ઇન્દ્રિયો કે તરફ કા લક્ષ્ય હટાકર વહી બાત હૈ. હા, ઇન્દ્રિય જ્ઞાનથી લક્ષ્ય છોડી દઈ, ઇન્દ્રિયના સુખથી પણ લક્ષ્ય છોડી દઈ. પ્રભુ અતિન્દ્રિય જ્ઞાન અને આનંદનો નાથ અંદર છે, ભગવત સ્વરૂપ છે, મહાત્મા છે, મહાઆત્મા છે, ભગવત સ્વરૂપ જ છે, જીન સ્વરૂપ પ્રભુ છે. આહા હા, ત્યાં દૃષ્ટિને જોડી દે, ત્યાં તને સુખ થશે, બાકી ક્યાંય સુખ છે નહીં. ભાવાર્થ, ઇન્દ્રિય જ્ઞાન ઇન્દ્રિયોના નિમિત્તથી મૂર્ત સ્થૂળ ઇન્દ્રિય ગોચર અર્થાત ઇન્દ્રિયને ગમ્ય, ઇન્દ્રિય ગમ્ય યા ઇન્દ્રિય ગોચર કરતા ઇન્દ્રિયો કે દ્વારા જાનને યોગ્ય, ક્યોંકિ સભી પુદગલોં કો ઇન્દ્રિય જાન નહીં સકતી હૈ. તો કહેતે સ્થૂળ ઓર વો ભી મૂર્ત ભી સ્થૂળ ભી ઇન્દ્રિય ગોચર પદાર્થોને જ, ઓર ક્યા કન્ડિશન હે, જ્ઞાનના ક્ષૌક્ષમિક ઉઘાડ અનુસાર જાણી શકે છે. વો તો ભલે ઇન્દ્રિય ગોચર હૈ પરંતુ જ્ઞાન કા ઉઘાડ કમ હોગા તો ભી ઉસકો નહીં પકડ સકતે. પરોક્ષ એવું તે ઇન્દ્રિય જ્ઞાન ઇન્દ્રિય પ્રકાશ આદિ બાહ્ય સામગ્રીને શોધવારૂપ એ પરોક્ષ હૈ, યાની ડાયરેક્ટ આત્મા દ્વારા નહીં વહા ઇન્દ્રિયો કા નિમિત્ત બનતા હૈ. ઇતના હિ નહીં, અન્ય ભી બાહ્ય સામગ્રી ભી વહા હોતી હૈ, પ્રકાશ હૈ, અર્થાત પ્રકાશ હોય તો થાય, દીવો હોય તો થાય, ફલાણું હોય તો જોવાય, એવી વ્યગ્રતાને લીધે, વ્યગ્રતાને અસ્થિરતાને લીધે અતિશય ચંચળ ક્ષુબ્ધ છે, અલ્પ શક્તિવાળું હોવાથી ખેદ ખિન્ન છે. ચંચલ ઇસલે કે હૈ કે ઇન્દ્રિય કે દ્વારા વો ઉપયોગ ભ્રમતા રહેતા હૈ, ઇસલે ચંચલ કહતા ઉસકો, ઓર ક્ષુબ્ધ ઉસી કે કારણ વો તો પર પદાર્થોને પરિણામવાનો અભિપ્રાય કરતું. પદર પદાર્થ અહીંયા આમ લાવું, આમ મૂકું, આમ છોડું, પણ પર પદાર્થ સ્વતંત્ર છે, પગલે પગલે ઠગાય છે. કારણ કે પર પદાર્થો આત્માને આધીન પરિણમતા નથી, તેથી પરમાર્થે તો તે જ્ઞાન અજ્ઞાન નામને જ યોગ્ય છે. એ જ્ઞાન અજ્ઞાન છે એમ કહે છે, કુજ્ઞાન છે. વહી જો ટીકા કે વાક્ય ઉન્હોને લીએ હોય યહાં પર, ઇન્દ્રિય સુખ છે એ દુઃખ છે, ઇન્દ્રિય જ્ઞાન છે તે અજ્ઞાન છે, અને સુખ છે તે દુઃખ છે. ભગવાન આત્મા એનું અંતર જ્ઞાન થવું અને અંદરમાં સુખ મળવું એ વસ્તુ છે, એ બતાવવા માટે આ બતાવ્યું છે. એનું તાત્પર્ય કંઈ આમાં ઊભું રાખવા માટે છે બાપુ, આ છોડવા જેવું છે. એને ઇન્દ્રિયો કા લક્ષ્ય, ઇન્દ્રિયો કે દ્વારા પર પદાર્થો કા જો લક્ષ્ય કરાતા ઉસકા વહાં સે ઉપયોગ હટાકર અપને સ્વસ્વભાવ મેં ઉસકો દૃષ્ટિ કરની હૈ, ઉસકી બાત યહાં હો રહી હૈ. ઇસલિયે ઉસકો હેય કહા, હેય ને ઉસકા લક્ષ્ય છોડને યોગ્ય હૈ, છોડવા જેવું છે, અને અંતરમાં ભગવાન બિરાજે છે ત્યાં દૃષ્ટિ કરવા જેવી છે, ત્યાં તને સુખ મળશે વિશેષ કહેશે. અબ 52 પૃષ્ઠ પર આતે હમ. 56 નંબર કી ગાથા ભી યહાં શરૂ હોને વાલી હૈ. ક્યા કહેતે, અથ ઇન્દ્રિયાણામ સ્વવિષય માત્રેપી યુગપત પ્રવૃત્તિ અસંભવાત હેયમ એવ ઇન્દ્રિય જ્ઞાનમ ઇતિ અવધારયતી. ક્યા કહેતે હૈ, ઇન્દ્રિયો કે અપને વિષય મેં ભી, અલગ અલગ ઇન્દ્રિયો મેં તો ક્રમ સે પ્રવૃત્તિ હોતી વો તો ઠીક હૈ, પરંતુ સ્વ વિષય મેં ભી युगपत प्रवृत्ति असंभवत, यानी एक इंद्रिय अपने विषयों को भी युगपत सबको जान नहीं सकती, उसमें प्रवृत्ति नहीं हो सकती उसके, यानी युगपत प्रवृत्ति होना असंभव होने से वो द्वेयम है ना, वो ध्येयम होना चाहिए, हेयम का वो द का ध हो जाता है, संभवात हेयम होना चाहिए ना, द्वे दिख रहा है ना, वो नीचे द के नीचे ध होना चाहिए, हाँ वो दिखता है, कितना नंबर है ये अपना, छप्पन अंदर लिया था ना आपने, एक मिनट, 56 निकालती हूँ मैं, पासो रसो, हाँ यहाँ 56-58 दो का डिफरेंस है, ने वो उन्होंने ऊपर हेडिंग उसमें नहीं लिया है, तेन कारणम कारणे ने हेयम ऐसा अलग से बताया है, ये वाक्य वहां नहीं दिया है। वो द के नीचे ध करना, संभवात हेयम, पेज नंबर 52 नई गाथा पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ते अभी। फासो रसो य गंधो वर्णो सद्दो य पुगला होन्ति अखाणम ते अखा जुगवम तेनेव गिण्णन्ति स्पर्शो रसश्च गंधो वर्णः शब्दश्च पुद्गला भवन्ति अक्षाणां तानि अक्षाणि युगपत्तान्नैव गृह्यन्ति ग्रसगन्धस्पर्शवणि वर्णने शब्दजे पौद्गलिकते छेन्द्रिविषयो ते मनेयन इन्द्रियो युगपदग्रहे। पहले एक वाक्य में उन्होंने यही हेडिंग में बताया था, उसी की बात है, अभी अन्वयार्थ पढ़ते हैं। स्पर्श है ने स्पर्श, रसश्च रस, गंध गंध, वर्ण वर्ण, शब्दश्च अने शब्द, ये क्या है सारे, पांच इंद्रियों के पांच विषय बताए। पुद्गला हा के जे वो पुद्गल छे ते वो अक्षाणाम भवंती इंद्रियोना विषयो छे, तानी अक्षणे परंतु ते इंद्रियो तान एटले तेमने पण युगपत यानी युगपत न एव गृह्णंती, गृह्णंती गृह्णंती होना चाहिए, गृह्यंती गृह्णन्ति, संस्कृत में गृह्यन्ति गृह्यन्ति, तो यहाँ ये ह बराबर नहीं लिया, हृदय जैसा ह किया है, गृह्य होना चाहिए, ह और य, ह और य, गृह्यन्ति मैंने ग्रहती नहीं क्या कहा। फिर से कहते कि वो हमने देखा ये पुद्गल है इंद्रियों ना विषय छे, परंतु ते इंद्रियो तेमने पण तेमने ने अपने अपने विषयों को भी युगपद ग्रहती नहीं, ग्रहण करना ने जानना, युगपद जान नहीं सकती। अब टीका पढ़ेंगे, हाँ वो गृहंती है ना, संस्कृत है वो, और राइट साइड में राइट साइड में वो हृदय जैसा निकाला उन्होंने।
तो कौन सा राइट?
गाथा का राइट है वो, बराबर है। गृहंति वैसे यहाँ पर भी होना चाहिए अन्वय अर्थ में, वहां हमने ठीक कराया। देखो टीका, मुख्य एवं स्पर्श रस गंध वर्ण तथा शब्द के जो पुद्गल छे ते वो इंद्रियों वड़े ग्रहावा योग्य यानी जनावा योग्य छे, परंतु इंद्रियों वड़े ते वो पण युगपद ग्रहाता नथी एटले जनाता नथी, कारण के क्षोभ शमनी ते प्रकारनी शक्ति नथी। जैसे केवल ज्ञान कैसे एक क्षायिक ज्ञान है, इसे क्षोभ शम ज्ञान में युगपद जानने की कैपेसिटी नहीं है। इंद्रियों ने जे क्षोभशम नामनी अंतरंग एटले अंदरनी जाननारी शक्ति ते कागड़ानी आँखना डोळानी जेम। आपको मालूम है कौवे के आँखे की बात कुछ विशेषता? हाँ बोलो बोलो। वो खिकी एक ही है, आँखें दो है और उसमें वो इधर। हाँ आपने देखा है कभी उसकी चमकती आँख, बीच बीच में चमकती आँख? वो खिड़की पर बैठा है और ऐसे 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 देखता है तो आँख में बीच में वो चमक आ जाती गोल ऐसे। हाँ देखो, जाननारी शक्ति ते कागड़ानी आँखना डोळानी जेम क्रमे प्रवर्तती हुआने लीधे, वो उनका जो वो जो किकी जो कहते वो तो क्रम से इधर से एक एक आँख में क्रम से प्रवर्तती अनेकतः प्रकाशवाने एक ही साथे अनेक विषयों ने जानवाने असमर्थ छे तेथी द्रव्येंद्रिय द्वारो विद्यमान हुआ छता, यानी द्रव्येंद्रिय वहां पर है पाई जाती, फिर भी समस्त इंद्रियों ना विषयों नु ज्ञान यानी विषयभूत पदार्थों नु ज्ञान एक ही साथे थतुं नथी, कारण के इंद्रिय ज्ञान परोक्ष छे। क्या कहना चाहते हैं? हमें ज्ञान का हम कितना जान सकते हैं? पांचों इंद्रियों के द्वारा जान सकते हैं, और द्रवेंद्रिया सब बनी है, हमारी आंखें खुली है, खुली है, कान तो क्या तो नाक, वो तो सब कार्य तो हो ही रहे ना हर समय, हर समय ने वो जानने की शक्ति वहां मौजूद है, वो फिर भी उपयोग एट ए टाइम पांचों में नहीं हमारा जान सकता, वो उपयोग भ्रमेगा कभी देखने के द्वारा कभी सुनने में कभी, वो इतना फास्ट होता है कि हमें लगता है कि हम एक साथ सब करें। देखो हम आपको देख भी रहे, आप सुन भी रहे, इस तरह से लगता है, पंखे की हवा भी ले, पर उसमें भी क्रम से उपयोग जाता है, ये कहना चाहते हैं। यानी क्षोभशम ज्ञान की एक कमजोरी है, यहाँ लिखा ना लास्ट दो लाइन, द्रव्येंद्रिय द्वारो यानी द्रव्येंद्रिय के द्वार विद्यमान हुआ छता यानी आंख नाक कान सब वहां पर बनी पड़ी है, समस्त इंद्रियों ना विषयों नु यानी पांचे इंद्रियों के जो विषय है स्पर्श से सबका एट ए टाइम ज्ञान एक ही साथे थतु नथी, कारण के इंद्रिय ज्ञान परोक्ष छे। अब इसी का भावार्थ इस बार टीका छोटी और भावार्थ बड़ा है। कागड़ा ने आंख बे होय छे पण पुतळी एटले कीकी एक ज होय छे, जे आँख थी कागड़ा ने जोवू होय ते आँख में पुतली आवी जाय छे, ते वक्ते ते बीजी आँख थी जोई शकतो नथी, आम होवा छता पुतली एटले झड़प थी बे आँखों में फरे छे के बन्ने आँखों में जुदी जुदी पुतली होय एम लोगों ने लागे छे। वास्तविक रीते पुतली एक ज होय छे, आवी ज दशा क्षोभशमिक ज्ञानी छे। द्रव्य इंद्रिय रूपी द्वारो तो पांच छे, पण क्षौक्षमिक ज्ञान एक वक्ते एक इंद्रिय द्वारा जानी शके छे। ते वक्ते बीजी इंद्रियो द्वारा कार्य थतु नथी। क्षौक्षमिक ज्ञान जारे नेत्र द्वारा वर्णने जानवानू एटले जोवानू कार्य करतु होय छे, त्यारे ते शब्द गंध रस के स्पर्शने जानी शकतु नथी, अर्थात जारे ते ज्ञाननो उपयोग नेत्र द्वारा वर्ण जोवामां रोकायो होय छे, त्यारे कान पर शा शब्दों पड़े छे, नाक मां केवी गंध आवे छे वगैरे ख्याल रहतो नथी। ऐसा होता है हमारा उपयोग कहीं और है, वो बाजू में जल रहा है हमारी कोई सब्जी, तो बाद में एकदम ख्याल, अरे वो तो थोड़ी उस समय हुआ, वो तो कब से हो रही थी, पर हमारा ख्याल आता है। बच्चे क्या करे, वो कॉमिक कुछ देखते हैं टीवी पर, इतना मशगूल हुए, माँ चिल्ला चिल्ला कर बुलाती है, उसको तो ऐसे लगता है हमने सुना ही नहीं, क्यों, अन्यत्र उसका उपयोग लगा है उस समय, ये बात है।
वो
बात नहीं है,
वो भी अपना कान का, अच्छा उसमें
नहीं, नहीं, वो आप जो सिद्धांत बता रहे हैं वो उसका उसका रीजनिंग अलग है, वो साइंस में उसको क्या कहते हैं,
माने दोनों की ये इसका जो फ्रीक्वेंसी है फास्ट है, माने जाने की, और ये साउंड थोड़ा स्लो चल रहा है,
ऐसा नहीं जैसे
ट्रैवल करने को
उतना बिजली चमकी और थोड़ी देर के बाद मेघ गर्जना सुनाई दी, उसमें ये कारण नहीं है, ये इंद्रियों के द्वारा क्रम से जानता है, ये उसका कारण नहीं है। उसका कारण हम साइंस में कहते कि प्रकाश जल्दी ट्रैवल होता है और आवाज स्लोली होता है, हाँ वो बात अलग है। यानी उसमें ऐसा भी कहेंगे कि जो साउंड का जो वो ट्रैवल होता है ना, क्या बीच का परमाणु उस रूप परिणमते हैं, और जब हम इंद्रियों पर अथलाते तब हमें वो आवाज सुनाई दी, हमेशा देखा होगा आप, हाँ वही तो, वहां क्या है बिजली चमकी, वो तो तुरंत देख लिया हमने, और कुछ सेकंड के बाद हम गिन भी सकते घड़ी में देखकर, इतने सेकंड के बाद वो आवाज आ गई। पर उसके लिए ये कारण नहीं कि एट अ टाइम नहीं, वो ये नहीं है, हाँ ये अलग बात है, क्योंकि हमें यहाँ की ये बात है, जैसे हमें लगता है हमने टीवी देख रहे हैं, तो वो तो वहाँ बोलते हुए आदमी भी दिख रहा है, उसके बाद भी सुन रहे, तो हमें देखने और सुनने में भी क्रम पड़ता है, वो हमारे ख्याल में नहीं इतना वो यानी सूक्ष्म है और इतना उपयोग फास्ट, यहाँ लिखा ना वो तो कौवे की दो पुतली है, परंतु लोगों को पता नहीं चलता है, उनको ऐसा लगता है इतनी फास्ट घूमती है कि ऐसा दोनों जगह देख रहा है ऐसा लगता है, ऐसे हमें भी लगता है कि हमें पांचों इंद्रियों के द्वारा एट ए टाइम जान रहे, हाँ नहीं नहीं उन हमें तो कोई नहीं पता चलता, वो तो हम आगम से जानते हैं ना, जाना उन्होंने आगम से जाना है, और हम उसका कुछ अनुमान लगा सकते हैं, जैसे हमारा ध्यान कहीं केंद्रित है और हमें वो तो वो सुनाई भी नहीं दे रहा, इस तरह से हो सकता है। नहीं नहीं उस वो जानना ही कहते हैं, उनका क्या कहते हैं, उन्होंने ऐसे एक के बाद एक होता है ऐसा देखकर उन्होंने समझाया अपने समय, वो उनके ख्याल में आता है, यानी वो प्रत्यक्ष है ना परोक्ष ही है ना वो सारा, हाँ, और विचार करने पर ख्याल में आ सकता है, क्योंकि हम उसको अनुमान से थोड़ा थोड़ा उसको दृष्टांत देके समझा सकते हैं, पर ये बातें हमें तो सूक्ष्म ज्ञान की और केवल ज्ञान की जो बातें हैं वो तो केवल ही ने बताई हुई उसी के अनुसार हम जान रहे हैं। अपन उनका जो ज्ञान है वो परंपरा से सर्वज्ञ से चला आया है, वही तो कह रहे हम, वैसा उनका कहना नहीं था, उनको ऐसा अनुभव होता है क्या कि क्रम से हो रहा है, ये उनका प्रश्न था।
आपने थोड़ी देर पहले एक उदाहरण दिया जलने का, तो वो जलने का उदाहरण भी यहाँ बैठता है कि वो भी अनुमान से,
नहीं नहीं वो तो है ना, क्योंकि हमारा लक्ष्य उधर है, हमारा अन्य इंद्रियों के द्वारा हम जानने में रुके थे, तो
अग्नि पे रखा
जैसे आपने सब्जी लगाई, सब्जी सेकने के लिए रखे, इतने में टेलीफोन आया, क्या होता है वो जलती है, फिर याद आता है कि अरे पास आ गया,
नहीं उससे तो हमें ये बात हमने पढ़ी, फिर वो बात हमको स्ट्राइक होती है, हाँ ऐसा ही होता है, क्योंकि वो तो धुआं आ रहा है, वो जल रही थी, फिर भी
हमारा
क्योंकि हमारा अन्य इंद्रियों के द्वारा उपयोग चल रहा था, तो वो बात जलती हुई बात वो या किसी और कोई बताता है, अरे जल रहा है, और फिर अरे सचमुच बास आ रही है। उसके पहले तो नाक तो खुली थी ना, वास आनी थी चाहिए थी, दुर्गंध आनी चाहिए थी, या जो कुछ उसके जलने की गंध आनी हो चाहिए थी। हाँ, क्योंकि हमारा उपयोग वहां नहीं था। यानी ये जब हम पढ़ते बाद में हम विचार करेंगे तो ये बात हमको यानी वो तो प्रतीति हो जाती है उसकी। देखो, ते वक्त बीजी इंद्रियों द्वारा कार्य थतु नहीं, क्षौक्षमिक ज्ञान जारे नेत्र द्वारा वर्ण ने जानवानु एटले जोवानु कार्य करतु होय छे, त्यारे ते शब्द गंध रस के स्पर्श ने जाणी शकतु नथी। अर्थात जारे ते ज्ञान नो उपयोग नेत्र द्वारा वर्ण जोवामां रोकायो होय छे, त्यारे कान पर शा शब्द पड़े छे, नाक मां केवी गंध आवे छे वगैरे ख्याल रहेतो नथी। जो के ज्ञान नो उपयोग एक विषय मांथी बीजा विषय मां झड़पती पलटातो होवाथी जाने के बधा विषय एक ही साथी जनाता हो एम स्थूल दृष्टि जोता लागे छे। सूक्ष्म विचार करने पर ये बात ख्याल में आती है। तो पन सूक्ष्म दृष्टि थी जोता शौक्षमिक ज्ञान एक वक्त एक इंद्रिय द्वारा प्रवर्ततु स्पष्ट रीते भासे छे लिखाय। सूक्ष्मता से उसको विचार करने पर यह ख्याल में आ जाता है। आ रीते इंद्रियो पोताना विषयों में पण क्रमे प्रवर्तती होवाथी परोक्ष एवं इंद्रिय ज्ञान है ये छे। यानी इंद्रिय भले हम पंचेंद्रिय जीव है किंतु उसमें हमारा ज्ञान क्रम से प्रवर्तता है। एट अ टाइम पांचों इंद्रियों का नहीं होता। अब कहते पांचों का छोड़ो दो इंद्रियों का तो होगा ना एट अ टाइम, तो कहते नहीं। अभी हम जयसेन आचार्य की टीका पढ़ते हैं। ये बीच में है ना, दो लाइन के बीच में 52 पेज पर। अथ चक्षुरादि इंद्रिय ज्ञानम रूपादि स्व विषयमपि युगपत न जानाति तेन कारणेन हेयम इति निश्चिनोति। इन्हें चक्षु इत्यादि जो इंद्रिय ज्ञान है, यानी चक्षु आदि में सब आ गए इंद्रिय ज्ञान, रूपादि विषय, चक्षु आदि इंद्रिय और रूपादि विषय, यानी चक्षु का रूप विषय है, ऐसे अलग अलग का अलग अलग विषय है, तो अपने अपने विषय में भी युगपत, यानी सभी इंद्रिया युगपत एट अ टाइम अपने सब विषय को नहीं जान सकते। हाँ, तेन कारणे नहीं हम, उस कारण से वो हेय है ऐसा नक्की करते हैं। फासो रसो ये गंधो वर्णो सद्दो ये पुगला होंती स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दा पुद्गला मूर्ता भवंती। यानी स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द ये पुद्गल है, वो मूर्तिक है। तेज विषया वे विषय है, केशाम किसके विषय है, तो कहते अखाणम स्पर्शनादि इंद्रियाणाम, स्पर्शन आदि इंद्रियों के वो स्पर्श वगैरह वो विषय है। देखो, स्पर्शन इंद्रिय है और स्पर्श उसका विषय है। रसना इंद्रिय, रसनेन्द्रिय कहेंगे हम, रसना नहीं कहेंगे, रसनेन्द्रिय और रस उसका विषय है। घ्राणेन्द्रिय और गंध उसका विषय, विषय ने जो ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज उनका जो है उसको विषय कहते हैं। वर्ण किसका विषय है, हाँ चक्षु इंद्रिय का वर्ण ये विषय है, और कर्णेन्द्रिय का हो या श्रोत्रेन्द्रिय कहो उसके शब्द ये विषय है, यानी वो इंद्रियों के विषय है। ते अखा यानी अख ने अक्ष यानी इंद्रिय, आत्मा को भी अक्ष कहते हैं, इंद्रिय को भी अक्ष कहते हैं। आपने सुना होगा एकाक्ष, वो एकाक्ष है। अच्छा, उसको बता, एक आंख से अंधा होता है उसको भी एक आंख कहते हैं।
संस्कृत वाले जाने
आपको मालूम है। ते अखा तानी अक्षाणी इंद्रियाणी कर्तृणी, ये उस इंद्रियों की बात है, यानी वाक्य का कर्ता वो इंद्रिया है। अभी क्या कहते वो जुगवम ते नैव गेन्नंती युगपत तान स्वकीय विषयान अपि न गृह्यंती न जानंती इति, यानी वो युगपत अपने अपने विषयों को भी नहीं जान सकती है। अयम अत्र अभिप्राय, यहाँ ऐसा अभिप्राय है। यथा सर्व प्रकार उपादेय भूतस्य अनंत सुखस्य उपादान कारणभूतम, उपादानम कारणभूतम का उपादान कारणभूतम, न के ऊपर बिंदी आ गई है, नहीं चाहिए क्योंकि एक शब्द लिया है ना पूरा उपादान, कहाँ गया 56 है ना, हाँ यहाँ 58 उपादान कारणभूतम, क्योंकि पूरा एक समास बनाया है ना उन्होंने, वो बिंदी नहीं चाहिए। फिर से यथा सर्व प्रकार उपादेय भूतस्य सर्व प्रकार उपादेय भूतस्य अनंत सुखस्य उपादान कारणभूतम केवल ज्ञानम युगपत समस समस्तम चाहिए, समंतम सममन म हो गया स चाहिए, समस्तम वस्तु जानत सत जीवस्य सुख कारण भवति। क्या कहते हैं जिस प्रकार सर्व प्रकार से उपाय भूत ऐसा जो अनंत सुख है उसका उपादान कारणभूत कौन है तो केवल ज्ञान, ऐसा जो केवल ज्ञान है वो युगपत समस्त वस्तु को जानता हुआ जीवस्य सुख कारणं भवति, जीव के सुख का कारण होता है। तथा इदम् इंद्रिय ज्ञानं स्वकीय विषयेपि युगपत परिज्ञान अभावात् सुख कारणं न भवति, वैसे यह इंद्रिय ज्ञान जो है वो अपने अपने विषय में भी युगपत पूरा ज्ञान करने का अभाव होने के कारण वो सुख का कारण नहीं हो सकता। अब ये दोनों ही टीकाएं हमने पढ़ी, अब 54 पृष्ठ पर आते हैं 54 गाथा 56 और उनका प्रवचन नंबर भी 56 है 3379 हाँ अपना 148 प्रवचन सार 56 गाथा। अब इंद्रिया मात्र अपने विषयों में भी युगत प्रवृत्त नहीं होती, क्या अधिकार चलता है कि जो इंद्रिय ज्ञान है वह है यह है, अति इंद्रिय ज्ञान भगवान आत्मा अंतर में उपादेय है। आहा बाह्य चीज तो है यह है परंतु इंद्रिय ज्ञान भी है यह है, ज्ञान तो अपना है परंतु वो परलक्षी है, पुण्य पाप का भाव तो है यह है परंतु यह जड़ इंद्रियों के निमित्त से जो ज्ञान होता है वह भी है यह। देखो पहले तो पर वस्तु को तो वो है यह क्या कहेंगे, वो तो अपने से जुदे ही है, उसको है यह नहीं कह सकते हम, परंतु एक अपेक्षा लक्ष्य छोड़ने योग्य इसलिए उसको भी कहीं कहीं है यह कह देते
तीन के बाद खाली है उपाधेय दो तीन बात आती
किसके
तो बाजू साइडलाइन कर
देते। देखो इसलिए क्योंकि यहाँ बात किसकी हो रही है,
एक है एक
यानी ग्रहण करना है कि छोड़ने लायक है, बस इतनी बात है यहाँ पर। उनके हेय और उपादेय दो की बात होती है, गेय की नहीं होती है ऐसा उनका कहना है। हाँ क्योंकि हेय उपादेश
प्रवचन में भी ऐसी बात आई थी इसलिए वो अलग
नहीं, नहीं जिसको कहेंगे ना इसको हेय उपादेय की बात आएंगी मुख्य। हाँ और वो श्रद्धान में हेय उपादेय लेना है। यहाँ तो तीसरी लाइन में ना बाह्य चीज तो है वही तो वो तो गेय में जाती है परंतु उसका लक्ष्य छोड़ने की अपेक्षा है या कह दिया उसको, परंतु इंद्रिय ज्ञान भी है ही है। देखो विकार को तो है या कह सकते, पर ज्ञान तो जीव का है ना स्वभाव भाव, परंतु वो कैसा है इंद्रिय ज्ञान, एक तो ये तो हाँ ये लिमिटेशन वाला है, परलक्षी है, और इतना ही नहीं वो मिथ्या तो है ना, पर को परिणमाने का जो भाव है उस सहित वो ज्ञान है, इसलिए उसको ये कहा। यहाँ क्या ना, पुण्य पाप का भाव तो है यह है, परंतु यह जड़ इंद्रियों के निमित्त से जो ज्ञान होता है वह भी है यह है, दुखदायक है, और दुखदायक होने से है कह दिया उसको, इसलिए इंद्रिय ज्ञान है यही है ऐसा निश्चय करते हैं। गाथा तो हमने पढ़ी, नीचे भी टीका पर प्रवचन, मुख्य स्पर्श रस गंध और वर्ण यह पुद्गल के मुख्य गुण है। मुख्य ऐसे स्पर्श रस गंध वर्ण तथा शब्द जो कि पुद्गल है, आज हिंदी में वह तो जड़ पुद्गल है ना, आहा, वे इंद्रियों के द्वारा ग्रहण होने योग्य ज्ञात होने योग्य है। रंग गंध रस स्पर्श और शब्द इंद्रियों द्वारा ग्रहण करने योग्य है, किंतु इंद्रियों के द्वारा वे भी युगपत एक साथ ग्रहण नहीं होते, जानने में नहीं आते। पांच इंद्रिय से ग्रहण होता है, लेकिन पांचों इंद्रिय के विषय एक साथ ग्रहण नहीं होते। अभी और विशेष कहेंगे, हाँ आहा हा, इंद्रिय ज्ञान हेय है, दुख रूप है, खेद है, खेद है ना, वो तो दुखी होता है ना, क्योंकि और जानना चाहता है वो जान नहीं सकता है। अज्ञानी जीव इस इंद्रिय ज्ञान में अनादि से सुख मान रहा है, ये उसकी भूल है। उसके लिए बात करते हैं, यानी उसकी सामग्री ढूंढने में, इंद्रियों को पुष्ट रखने में, ठीक रखने में उसका सारा प्रयत्न रहता है। क्यों? उसमें से सुख मिलता है, ये मान्यता पड़ी है वहां पर। पर चीज तो है यह है, शुभाशुभ भाव भी है यह है। आपका प्रश्न था ना वो गेय क्यों नहीं कहा, पर यहाँ गेय हेय रूपादे इतनी दो ही बातों सामान्य से लिए, तो कहते शुभाशुभ भाव भी है यह है, परंतु इंद्रिय ज्ञान भी है यह है, यानी उसका लक्ष्य छोड़ने लायक है, इस तरह से ये लेना है। हाँ, ज्ञान में इंद्रिय ज्ञान भी है यह है। वास्तव में तो इंद्रिय ज्ञान से जो शास्त्र सुनने में आया और शास्त्र का ज्ञान हुआ वह भी इंद्रिय ज्ञान है। आहा, दुख रूप है, तो भगवान को देखा कौन सी इंद्रिय से देखा, वो भी इंद्रिय का विषय है ना, ये कह रहे ये क्या कहा, वही रुके रहेंगे। हाँ, यानी वो केवल इंद्रियों का विषय करके रुकना नहीं है, जो हमने जाना है उसने जो बताया है उसको विषय करना है। शब्द जो है वो वाचक है, आत्मा शब्द सुना, किसको बताते हैं, आत्मा नाम के पदार्थ को, वो आत्मा को हमने लक्ष्य करके जाना तो हमने वो शब्द सुना, वो उसको कहेंगे, वो तो व्यवहार से ठीक कही जाएगी उसको। देखो
जो बात हो रही वो किसी अपेक्षा,
आपकी आवाज ही नहीं है,
किसी अपेक्षा से ये कथन हो रहा है, वो हम आगे चले चुके भगवान के दर्शन ही नहीं करे, उसके लिए ये बात नहीं बता रहे हैं।
आपकी आवाज आ रही है,
यहाँ पर इसलिए कह रहे हैं कि उसी में तू अटका रहेगा, इसी में तू अटका रहेगा तो अपने आत्मा का अनुभव नहीं करेगा,
इसमें आवाज नहीं है,
क्योंकि वो बाह्य वस्तु में आए, यानी जहाँ जिस
अपेक्षा, आपकी नॉर्मल आवाज है भी, ये बिल्कुल इसमें आवाज ही नहीं आ रही,
जहाँ जिस अपेक्षा से कथन किया है
वहाँ वायर जरा ये करो नीचे की, आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है, इसमें नहीं आएगी,
स्पीकर से नहीं आती, डायरेक्ट
बोलो,
अच्छा डायरेक्ट डायरेक्ट बोलो, उतनी आती है। हाँ,
यहाँ पर यही बात चल रही है कि जहाँ जिस अपेक्षा से जो कथन किया है वो समझना अपना कार्य है, जैसे आपने हे उपाधि में गे क्यों नहीं रखा रहे, वो तो सात तत्वों में लगे ना, यहाँ तो सिर्फ हे क्या है और गे है,
उपाधि
क्या है, इसकी बात चल रही है।
नहीं, आवाज नहीं है उसमें। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ेंगे। कहाँ तक आए थे? 55 पेज पर थे ना। तीसरी लाइन चले, परंतु इंद्रिय ज्ञान भी यही है, ज्ञान में इंद्रिय ज्ञान भी यही है। नहीं, ये वो आगे की दो लाइन पढ़े थे, फिर से पढ़ते। वास्तव में तो इंद्रिय ज्ञान से जो शास्त्र सुनने में आया और शास्त्र का ज्ञान हुआ, वह भी इंद्रिय ज्ञान है। दुख रूप है, श्रवण करके अपने पर्याय में ज्ञान हुआ, वह ज्ञान आत्मा का नहीं है, वह तो शब्दों का ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान हुआ। यानी शास्त्र को जाना, शास्त्र का ज्ञान यानी शास्त्र को जानना हुआ, आत्मा को नहीं जाना, वह भी दुख रूप है, ऐसी बात है। हा हा, सुख रूप तो यह आत्मा अंतर आनंद मूर्ति प्रभु है, उसकी दृष्टि करने से जो ज्ञान में से ज्ञान आता है। क्या कहा? सुखरूप कौन है? आत्मा, आनंद मूर्ति प्रभु। उसकी दृष्टि करने से जो ज्ञान में से ज्ञान आता है और उसके साथ अतीन्द्रिय आनंद आता है, उस ज्ञान को ज्ञान कहने में आता है। इसलिए कहते आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। वो ज्ञान में से ज्ञान आया और वो सुख सहित है, अतीन्द्रिय सुख सहित है। इंद्रियों के द्वारा ग्रहण होने योग्य, इसलिए ज्ञात होने योग्य है, किंतु इंद्रियों के द्वारा वे भी कौन से? उसके विषय। वे भी युगपत इसलिए एक साथ ग्रहण नहीं होते, जानने में नहीं आते, क्योंकि क्षोभशम की उस प्रकार की शक्ति नहीं है। एक क्षोभशम ज्ञान में तो कमजोरी है उसकी, अर्थात क्षोभशम ज्ञान में इतनी शक्ति नहीं है कि सबको एक साथ जाने। क्षोभशम समझते हो? ज्ञान का जो विकास है, विकास है ने उगाड़, क्षोभशम, इस क्षोभशम में भी इतनी ताकत नहीं है कि एक साथ पांचों इंद्रियों के विषय जाने, क्योंकि क्षोभशम की उस प्रकार की शक्ति नहीं है। इंद्रियों के जो क्षोभशम नाम की अंतरंग ज्ञातृ शक्ति है, यानी कि जानने की शक्ति है, वह कौवे की आंख की पुतली की भांति, कौवा होता है ना, कौवा, कौवे को एक पुतली होती है, आंखें दो होती है, आंखें दो होती है, पुतली एक होती है, एकदम इस ओर घूमे तो यहाँ का देखे, दूसरी ओर घूमे तो वहां देखे, पुतली एक ही होती है। लोगों को ख्याल नहीं आए कि यह दो है या एक है। कौवा होता है ना कौवा, वह चप्पल कहा जाता है, उसे आंखें दो होती है लेकिन देखने की पुतली एक ही होती है। इस ओर घूमे तो भी दिखे, दूसरी ओर घूमे तो भी दिखे। इस तरह कौवे की आंख की पुतली की भांति क्रमिक प्रवृत्ति वाली होती है, जैसे उसकी पुतली भी एक के बाद एक जाने, अर्थात इस ओर रखे तो यहाँ का देखे, एक साथ दोनों को जान नहीं सकती। इस प्रकार इंद्रिय ज्ञान क्रमिक प्रवृत्ति वाला होने से, अर्थात क्रमिक एक विषय को जाने तो दूसरे को नहीं जाने, अर्थात एक छोड़कर दूसरे को जाने, अनेकतः प्रकाश के लिए यानी एक ही साथ अनेक विषयों को जानने के लिए असमर्थ है। एक राजा था, उसकी बात सुनी थी कि आहार ले, सामने वेश्या नाच करे, माख के फूलों के बीच बैठे इसलिए सुगंध ले सके, ऐसा माने कि पांचों इंद्रियों को एक साथ ग्रहण करे, एकदम विषय फिरता है, एक में लक्ष्य होता है उस समय दूसरे में नहीं होता, दूसरे में होता है उस समय तीसरे में नहीं होता, उसकी भी कहां खबर है? आंख से रूप देखे तब सुनने में लक्ष्य नहीं होता, सुनने में लक्ष्य हो तब आंख से देखे नहीं, एक इंद्रिय का एक ही विषय देखे, ऐसा है। समझ में आया? अब ये राजा की बात क्या, ये सभी राजा ही राजा है। क्या करते हैं, भोजन की थाली लेके टीवी के सामने बैठते हैं, टीवी ऑन कर दिया तो क्या आंखों का भी विषय होगा, कान का भी विषय हुआ, पंखा लगाओ एसी लगाओ वो तो स्पर्शन इंद्रिय का भी विषय हुआ। अब ये खाना लेके बैठा है ना तो पूरा स्वाद और फिर कोई सुगंधी कोई द्रव्य भी लगा के बैठा है, उसको क्या लगता है, देखो मैं पांचों इंद्रियों का भोग कर रहा हूँ एट ए टाइम, सब राजा होकर बैठ जाते हैं ना। तो कहते फिर भी क्रमिक प्रवृत्ति ये भी उसको पता नहीं चलता, उसको लगता है अरे देखो मैं कैसा ठाठ-बाठ से सबको एट ए टाइम देख रहा हूँ भोग रहा हूँ। क्रमिक प्रवृत्ति वाली होने से अनेकतः प्रकाश के लिए एक ही साथ अनेक विषयों को जानने के लिए असमर्थ है, इसलिए द्रवेंद्रिय द्वारों के विद्यमान होने पर भी, द्रवेंद्रिय रूपी द्वार क्या कहते हैं कि ये द्रवेंद्रिय विद्यमान है, आंख कान सब भले हो फिर भी समस्त इंद्रियों के विषयों का, विषयों का यानी विषयभूत पदार्थों का ज्ञान एक ही साथ नहीं होता। जड़ कान आंख नाक जीभ स्पर्श आदि द्रव्य इंद्रिय तो एक साथ है, क्योंकि इंद्रिया तो जो जब से बनी है तो शरीर में पांचों विद्यमान है और हम कहें सारे द्वार खुले हैं इंद्रियों के, फिर भी ज्ञान तो एक साथ एक एट ए टाइम एक समय में, वो भी अंतर्मूर्त तक एक इंद्रियों के विषय को जानेगा तब वो ज्ञान में आएगा उसको, तब जाके उसका अंतर्मूर्त के बाद पलटेगा उपयोग, एक एक समय में नहीं पलटता, एक समय में ग्रहण ही नहीं होता उसका, एक विषय को अंतर्मूर्त जाने फिर दूसरे विषय दूसरे इंद्रियों द्वारा अंतर्मूर्त जाने फिर तीसरे, क्या ये ऐसे अंतर्मूर्त भी ख्याल में आते हैं, तो कितना छोटा अंतर्मूर्त होता है, क्योंकि हमने एट ए टाइम सबको नहीं जाने ये भी नहीं जान रहे हम, और उसमें भी चक्षु इंद्रिय के द्वारा जाना मति ज्ञान हुआ, अब कान के प्रति उपयोग गया तो उसमें अंतर्मूर्त के लिए दर्शन उपयोग भी होगा, क्योंकि दर्शन उपयोग पूर्वक मति ज्ञान होता है, और एक इंद्रियों के द्वारा जाना फिर हमने अन्य इंद्रियों के द्वारा हमारा उपयोग चला तो उसके बीच में वो दर्शन उपयोग भी होगा, उस इंद्रिय संबंधी दर्शन उपयोग होगा वहां पर।
जब दिन आती है तो दर्शन उपयोग बंद हो जाता है,
इसकी वजह से ना उपयोग बंद नहीं होगा क्योंकि वो तो उसको चलता रहता है,
तो हमारे ख्याल में
मन की बात तो चल ही रही ना वहां पर,
वो भी हमारे लक्ष्य में नहीं,
वो तो सपने वगैरह चलते रहते ना, कुछ ना कुछ चलता रहता है उसमें भी होता रहता है, और नींद भी कहां, हम कहते हम 7-8 घंटे सोए, किसी एक पांच प्रकार की निद्रा अंतर्मूर्त से ज्यादा नहीं होती, वो भी पलटती रहती उसमें भी। और बीच में कुछ यथायोग्य जागृत अवस्था या तरलता आ जाती है फिर दोबारा वो, यानी जैसे यहाँ हमारे ख्याल में नहीं आता है अलग अलग, वैसे वहां पर भी नहीं आता। हाँ देखो क्या कहते हैं, कुंभकर्ण अपने में 6 महीने की बात नहीं, वो अन्य मति बोलते हैं 6 महीना की। हम कहेंगे हमने तो देखे कि 2-2 दिन सोते रहते हैं तो उसमें भी वो विशेष प्रकार की निद्रा है, वो अंतर्मूर्त से ज्यादा नहीं होगी, 5 प्रकार की निद्रा है ना। और बीच में वो कुछ जागृति भी आती होगी ना, मच्छर काटता है तो इधर से उधर करवट बदलेगा जो कुछ करेगा, तो उसमें तो हो ही जाती है, ज्ञान में आया तो उसके पहले दर्शन तो हो ही गया उसका। देखो देखो हाँ विशुद्धि कम हो जाती है, एक्चुअली दर्शन उपयोग में भी विशुद्धि कम हो जाती है, न संकलेश आती है न विशुद्धि आती है, और निद्रा में भी तो और भी कम हो जाता है, वो तो ज्यादा संकलेश नहीं होते, ज्यादा विशुद्धि भी नहीं हो सकती निद्रा, इसलिए हमने देखा ना सम्यक तो होता है तो जागृत अवस्था में होता है। हाँ देखो ये नया पैराग्राफ 56 पेज पर। इसलिए द्रव्येंद्रिय द्वारों के विद्यमान होने पर भी, ये हमने पढ़ा था ना पांचवी लाइन, द्रव्येंद्रिय तो एक साथ है परंतु एक इंद्रिय के विषय में दूसरा विषय जान नहीं सकता। क्या कहते यह भगवान आत्मा तो अन इंद्रिय है ना, अनिंद्रिय यानी बिना इंद्रिय का। इंद्रिय तो शरीर के जो द्रव्येंद्रिय शरीर में बनी है। अनादिकाल से पांच इंद्रिय की ओर के झुकाव के कारण एक इंद्रिय के विषय ऊपर लक्ष्य हो तब दूसरे विषय का लक्ष्य नहीं होता। द्रव्येंद्रिया पांचों पड़ी है परंतु सुनने में लक्ष्य हो तो रूप को नहीं देख सकता, रूप ऊपर लक्ष्य हो तो उस वक्त सुन नहीं सकता। ज्ञान ऐसा अल्प और अधीर है, हा हा, ऐसा तो ज्ञान क्रमिक है। कहाँ तक ले गए? आत्मा के अलावा दूसरे पदार्थ तो हेय है, तेरे में है ही नहीं इसलिए वो हेय का। स्त्री कुटुंब परिवार पैसा मकान में तो धूल है, बाहर है, अंदर में कर्म है, वे भी हेय है। ये देखो आपका प्रश्न हेय है कि गेय है, पूछा ना, हेय है, हेय रूप गेय है। क्या कहा? नहीं तो क्या वो गेय है ना, चलो जानते रहो, वो जानते रहने लायक भी नहीं है। ख्याल में है ना, ज्ञान के गेय है बस इतने, कैसा ये मैं नहीं हूं करके उसको छोड़ना है बस इतना, यानी उसका लक्ष्य छोड़ना है, उसी को जानते नहीं रहना, ये कहना चाहते हैं। ये गेय क्यों कहा था, हे गेय उपाधेय में गेय क्यों? क्योंकि वो तो मैं इस रूप नहीं हूं इतना जानना है। अब ये गेय कहकर उसी को जानने में लुब्ध होकर बैठ गया है, इसलिए उसको हे ये कहा। किस अपेक्षा से? वो जानकर वो जानना उसको, यानी वो तो उसको जानते रहने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए हे ये कहा। देखो क्या कहा, हे इनका ही प्रश्न आया 56 पेज पर नीचे से, जो दो पैराग्राफ के ऊपर श्रोता ने पूछा ना, हे यह है कि गेय है, क्योंकि ऊपर बताया था कि आत्मा के अलावा अन्य पदार्थ तो है यह है, क्योंकि अपने में है ही नहीं है। स्त्री कुटुंब परिवार पैसा मकान धूल है, बाहर है, कर्म है, वो भी है यह है।
इस,
हाँ इसलिए पूछते हैं, मिला क्या, हे यह है कि गेय है? श्रोता ने पूछा ना, हे यह के गे है, यही उनका प्रश्न था अभी। तो कहते हे यह है, हे ये रूप गेय है, और आत्मा उपादेय रूप गेय है। यानी ये ज्ञान के गेय है, परंतु वो तो उसको जानने लायक, उसको उसी में रमने लायक नहीं है, उसको छोड़ देने लायक, उसका लक्ष्य छोड़ने लायक है। और आत्मा का वो गेय तो है, उसी को जानते रहने लायक, ये कह रहे हैं। बापू बहुत सूक्ष्म बात भाई, हा हा, गेय जानने लायक तो दोनों चीज है, परंतु ये इंद्रिय से गेय जानते हैं वो हेय है। ये बाह्य जो गेय जिसको हमने अन्य पदार्थ कहा, वो इंद्रियों के द्वारा जान रहे हैं, इसलिए उसको हेय में गिना। देखो गेय क्या कहा, जानने लायक तो दोनों चीज है, जानने लायक में उसको जानते रहने लायक ऐसा नहीं कहा, ज्ञान के गेय बस इतना ही लेना। परंतु ये इंद्रिय से गेय जानते हैं वह हेय है, और अति इंद्रिय ज्ञान से अंतर में जानते हैं वो उपाधेय है। क्योंकि हमें यहाँ इंद्रिय ज्ञान और अति इंद्रिय ज्ञान की बात चल रही है, यहाँ पर आत्मा उपाधेय है इसी बात है। हाँ हाँ, ये बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया उन्होंने। वह कब निवृत्ति ले और अपनी चीज अंतर में परमात्मा स्वरूप विराजमान है उसको जाने, उस ओर वर्तमान ज्ञान की पर्याय का झुकाव करने से, पर्याय का झुकाव करने से पर्याय स्वतंत्र है तो स्वतंत्र रूप से चैतन्य मूर्ति भगवान ऊपर दृष्टि करने से उसको जो ज्ञान यानी आत्मज्ञान होता है वह सच्चा ज्ञान है, और इस ज्ञान में सुख है। पर्याय तो है स्वतंत्र, तो स्वतंत्र रूप से जो हमने देखा था ना कर्ता कारक में, स्वतंत्र रूप से जो करता होता है वो पर्याय स्वयं अपना करता है। तो जो ज्ञान होते हैं ना आत्मज्ञान होता है वो सच्चा ज्ञान है और उसमें सुख है। ये पैसे में स्त्री पुत्र में सुख नहीं है ऐसा कहते हैं। लोगों को लगता है हमें तो प्रत्यक्ष सुख भाषित हो रहे हैं, आप नहीं नहीं कह रहे हैं। श्रोता, घर में क्लेश होता है, गुरुदेव श्री, क्लेश तो अंदर तू करता है, तेरी इंद्रियों से इंद्रिय ज्ञान में मजा है, यह क्लेश करता है। मृग की नाभि में कस्तूरी, मृग को खबर नहीं, हिरण हिरण उसकी नाभि में कस्तूरी है, यानी वो सुगंधी द्रव पदार्थ आता है कस्तूरी नाम का, उसके नाभि में आता है और वो उसकी गंध आती है तो वो ढूंढता है, पूरे इधर उधर भटकता है, लेकिन खबर नहीं। कस्तूरी की गंध मानो बाहर से आती है ऐसा मानकर बाहर ढूंढता है। हाहा, इस प्रकार मृग जैसे मनुष्य, सुख तो अंदर में है परंतु सुख मानो बाहर से कहीं से मिलेगा, हाहा, इंद्रिय में से सुख मिलेगा ऐसा मानकर बाहर ढूंढता है। मृग जैसे मनुष्य, वो आता है ना, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती, सुना है कि नहीं सुना? क्या अर्थ है मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती?
मनुष्य का बाहर का पिंड है लेकिन जानवर की जैसा।
हाँ, मृगा यानी वहाँ कोई भी पशु, पशु जैसे, तो कहते मृग जैसे मनुष्य, मृग से भी हल्के। मृग को तो सुनने का योग भी नहीं है, क्या सुनने का? ये शास्त्र सुनने का। और इसे तो सुनने का योग है फिर भी छोड़ता नहीं है, यानी वो मृग सुन नहीं सकता वो बात नहीं है, यानी उसको तो शास्त्र स्वाध्याय, वो कुछ सत्समागम तो है ही नहीं है, यानी शास्त्र सुनने का तो उसको योग नहीं है, और ये सुनकर भी ये अपनी बात छोड़ता नहीं है। उसकी कस्तूरी की बेचारे को खबर नहीं है, शिकारी उसे मारे तब नाभि में से कस्तूरी निकलती है, वह कस्तूरी शिकारी ले जाता है, नाभि में कस्तूरी होती है कीमती। आहाहा, वैसे यह परमात्मा स्वरूप भगवान अंदर द्रवेंद्रिय और भावेंद्रिय से भी पार, पार एटले विराजमान है। भावेंद्रिय ने क्षोभम ज्ञान, द्रवेंद्रिय तो ये शरीर की इंद्रिया, और भावेंद्रिय ने यह क्षोभम ज्ञान जो हमने अभी कमजोरी, हाँ, यह तो जड़ द्रवेंद्रिय है और एक एक विषय को जाने वह भावेंद्रिय है, उससे भी पार अंदर भिन्न है जो अतीन्द्रिय ज्ञान आनंद स्वरूप है। ऐसे परमात्मा को अंतर्मुख होकर जानना यह आनंद का कारण है, और हर एक का अपना अपने में है, कहीं बाहर ढूंढना नहीं है, हा? और मिलेगा कि मिलेगा, मेरे में होगा कि नहीं होगा, ऐसे कोई गुंजाइश नहीं वहां कुछ चांस की, हा? बाकी इंद्रिय ज्ञान तो दुख का कारण है, पुण्य दुख का कारण है, दुख रूप है। क्या कहा? और किसके लिए कर रहे हैं? संयोग अच्छे मिलेंगे, सुख मिलेगा, ने वो भी पुण्य क्यों कर रहे हैं? तो हमारे वर्तमान कोई संकट है वो तो टल जाएगा, इसलिए करता है जीव। वो इटसेल्फ दुख है, कहते हैं दुख रूप है, क्योंकि पुण्य ने वो क्या है? राग है, राग है वो दुख है। अरे पण कषाय है ना, उसको मंद नाम देके क्या पुरु है, तो दुख। हाँ, पाप का परिणाम दुख रूप है, हिंसा झूठ चोरी विषय भोग वासना ये भाव दुख रूप है, दयादान व्रत भक्ति आदि के परिणाम राग है, दुख रूप है। इससे भी आगे कहते हैं कि इंद्रिय से ज्ञान करता है वह भी दुख रूप है। यहाँ का विषय वही चल रहा है ना, समझ में आया कहाँ तक ले गए हम? यही रुकते अभी आज। चावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तकनम सदा देत होडो। नलिन भाई,
नमो सिद्धान्त, नमो सिद्धान्त, नमो आर्यान्त, नमो वैष्णवान्, नमो वैष्णवान्, नमो सिद्धान्त, नमो आर्यान्त, नमो सिद्धान्त, नमो वैष्णवान्, नमो सिद्धान्त।